व्योम के शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका और कबीर जैसे ग्रंथों के लेखक। दूसरे हैं व्योम के शास्त्री, बाणभट्ट की आत्मकथा और चारु चंद्र लेख जैसी कीर्तियों के रचनाकार। स्वयं द्विवेदी जी के अनुसार ये अभिन्न है, अभिन्न मित्र नहीं सिर्फ अभिन्न। एक क्यों नहीं, आखिर इस अभिन्न की आवश्यकता क्यों? व्योम के शास्त्री के जन्म की कहानी एक लेख में द्विवेदी जी ने स्वयं ही लिख दी है। बात जवानी के दिनों की है, अपने ज्योतिष गुरु के मत की आलोचना में एक लेख लिखा है। अपने नाम से छापने की हिम्मत न थी, इसलिए नाम छिपाने के लिए एक छद्म नाम चुना, व्योम के शास्त्री। विधि की विडंबना यह है कि उस लेख के आधार पर शास्त्री जी को एक शास्त्रार्थ में भाग लेने का निमंत्रण आ गया। रहस्य खुल जाने की स्थिति पैदा हो गई। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर से सलाह लेने गए। गुरुदेव ने क्षण भर आंखों में देखा, फिर सहज भाव से कहा, न जाओ, तुम में सत्य के प्रति जितनी आस्था है उससे कहीं अधिक भय और संकोच है। तुमने अपना नाम छिपाया, वहीं से गलत रास्ते पर चल पड़े। देखो, जब किसी की प्रतिकूल आलोचना करनी हो तो नाम मत छिपाया करो। नाम छिपाना भी सत्य को छिपाना ही है। बहरहाल संकट किसी तरह टल गया। गुरुजी ने क्षमा भी कर दिया, फिर भी व्योम के शास्त्री को छुट्टी नहीं मिली। प्रतिकूल आलोचनाओं के लिए तो उनका उपयोग नहीं हुआ, पर कुछ ललित लेख उन्हीं के नाम से छपे जो विचार और वितर्क में संकलित हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। बाणभट्ट की आत्मकथा के साथ ही शास्त्री जी का नाम चिपका है और चारु चंद्र लेख के साथ भी। पुनर्नवा को उनसे मुक्ति मिली, लेकिन कुछ दिनों बाद जब लेखक से उसकी रचना प्रक्रिया पर लिखने के लिए कहा गया तो शास्त्री जी फिर याद आए और काम भी आए। गरज की अभिन्न व्योम के शास्त्री लगभग आजीवन चिपके रहे। आखिर इसका क्या रहस्य है? मन में सहज ही एक बात उठती है, जब अपने छद्म नाम की समस्या को लेकर द्विवेदी जी रविंद्रनाथ के पास गए तो उन्होंने उनसे क्यों नहीं पूछा कि आपने भानु सिंह के नाम से ही अपनी आरंभिक रचनाएं क्यों छपवाई? रविंद्रनाथ ने जिस भय और संकोच का जिक्र किया था, क्या वह स्वयं अपना अनुभव था? इन प्रश्नों का सीधा उत्तर द्विवेदी साहित्य में कहीं सुलभ नहीं है। परोक्ष उत्तर कहीं हो तो देखा जाए। जय शंकर प्रसाद की कविताओं के प्रसंग में द्विवेदी जी ने एक विचित्र बात कही है। लिखा है, सौंदर्य पार्थिव, सौंदर्य के प्रति प्रसाद का आकर्षण बहुत अधिक है, परंतु शुरू शुरू में वे उसे व्यक्त नहीं कर पाते थे। उनके मन में इस बात से कुछ चिंता भी हुई, परंतु फिर वे इस प्रकार सोचते जान पड़ते हैं कि आवरण और अवगुंठन बुरा क्या है। विधाता ने तो सारे संसार में अवगुंठन का जाल फैला रखा है। नग्न और अनावृत सत्य उन्हीं को इष्ट नहीं है। यह आलोक का अंधकार और अंधकार की आंख मिचौली तो उन्हीं ने चला रखी है। इसी तरह रास्ते सोचता हुआ कवि अंत में अवगुंठन के तत्ववाद तक पहुंचता है। अब उसे समझ में आता है कि आरंभ में ही जो विधाता ने उसके हृदय में झिझक और संकोच भर दिया था, वह भी उनकी कृपा ही थी, वह भी उनकी एक लीला ही थी। प्रसाद जी के काव्यों में और उनके नाटकों में भी यही चिंतन प्रणाली स्पष्ट हुई है। साहित्य, हिंदी साहित्य, उसका उद्भव और विकास। पृष्ठ संख्या 292 से 293। क्या स्वयं द्विवेदी जी इस अवगुंठन के तत्ववाद के कायल थे? क्या स्वयं उनमें भी आरंभ में कुछ झिझक और संकोच का भाव था? खास तौर से पार्थिव सौंदर्य और प्रेम की अभिव्यक्ति को लेकर। प्रसाद के संदर्भ में द्विवेदी जी ने स्पष्ट लक्षित किया है कि इस झिझक, संकोच और सलज्ज अवगुंठन का सामाजिक कारण है। कवि जिस रूप में जगत के सौंदर्य को देख रहा है वह परिपाटी विहित रसज्ञता के अनुकूल नहीं है। तो क्या स्वयं द्विवेदी जी भी इस सामाजिक निषेध से किसी हद तक पीड़ित थे? पहले बाणभट्ट की आत्मकथा को ले। व्योम के शास्त्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनमें प्रेम की व्यंजना गूढ़ और अदृप्त भाव से प्रकट हुई है। फिर इस आत्मकथा की लेखिका मिस कैथराइन की आत्म स्वीकृति के अनुसार, जबकि यह कथा है, वे दिन लज्जा और संकोच में ही निकल गए। कथा लिखने का साहस उन्हें तब हुआ जब वे 68 वर्ष की हो गईं। बाद में लिखी हुई चिट्ठी में स्पष्ट संकेत है कि दरअसल बाणभट्ट की आत्मकथा के बहाने उन्होंने अपनी ही कथा लिखी है, अर्थात आत्मकथा है भट्टिन की ही। भट्टिनी ही की दृष्टि से देखे हुए अपने प्रिय बाणभट्ट की छवि। मिस कैथराइन को सीधे सीधे लिखने का साहस नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने वह परोक्ष विधि अपनाई और उसे वैष्णव भक्ति के तत्ववाद का सहारा लेकर एक अवगुंठन में लपेट दिया। जिस तन्मयता से वह रात भर उसे लिखती रही, वह किसी पांडुलिपि की प्रतिलिपि मात्र का काम नहीं हो सकता। उन्होंने स्वयं ही यह संकेत दिया है कि बाणभट्ट केवल भारत में ही नहीं होते, इस नरक लोक से किन्नर लोक तक एक ही रागात्मक हृदय व्याप्त है। इस प्रकार इस कथा में चक्र के भीतर चक्र है, आवरण पर आवरण। क्या यह सिर्फ एक कौशल है? इस कौशल में छिपाव का कोई भाव नहीं। क्या प्रसाद की तरह यहाँ भी अवगुंठन के तत्ववाद में अपने आप को छिपाने की कोशिश नहीं है? चारु चंद्र लेख में मिस कैथराइन का स्थान अवधूत अघोर नाथ लेते थे और इस प्रकार वह भट्टिनी की जगह चंद्रलेखा की आत्मकथा बनकर सामने आता है। आरंभ में कुछ ऐसा संकेत मिलता है कि तीन कोणों से कथा कहने की योजना है, कुछ अंश सातवाहन के कोण से, कुछ चंद्रलेखा के कोण से और शेष अन्य पुरुष अर्थात अघोरनाथ की टिप्पणियों के रूप में। व्याकरण की भाषा में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इस बात की पुष्टि उन स्थलों से होती है जहाँ चंद्रलेखा अपनी कथा अन्य पुरुष शैली में कहती है। किंतु ऐसा लगता है कि इस विन्यास की जटिलता को देखते हुए आगे चलकर इसे छोड़ दिया गया है। कथा का सबसे नाजुक अंश है सातवाहन, मैना का परस्पर अनुराग। दोनों ओर पर्याप्त संकोच है, इतना संकोच है कि मैना अपने आप को छिपाने के लिए पुरुष वेश धारण कर लेती है और बाद में जब यह भेद खुल जाता है तब भी अंत तक दोनों इस वेश परिवर्तन पर रहस्य का आवरण डाले हुए रागात्मक संबंध निभाए चलते हैं। पुनर्नवा में व्योम के शास्त्री की आड़ लेते न देख कर लगता है कि प्राणवय के कारण झिझक दूर हो गई, लेकिन इस एक आड़ के हटते ही अधिकांश चरित्र अपने आप को छिपाए फिरने के लिए विवश होते हैं। लैरिक और संवरूक देर तक छिपते फिरते हैं, यहाँ तक कि परम पंडित देवरथ भी मंजुला देवी के प्रेम के चोट खाकर आश्रम तज देते हैं। सर्वत्र एक ही कारण है, लोकापवाद। इस प्रकार द्विवेदी जी अपनी कीर्तियों में कम से कम दोहरा अवगुंठन इस्तेमाल करते हैं, एक तो अपने अभिन्न व्योम के शास्त्री का और दूसरा वह व्यक्ति चरित्र जो पूरी कथा लिखकर शास्त्री जी को देता है। दोनों के लिए एक तत्ववाद है जिसे वैष्णव दर्शन सुलभ कर देता है। मूल सिद्धांत है अपने को कर्ता न मानना। इस धारणा का आधार है द्विवेदी जी का यह प्रिय श्लोक, तत्रैवं सति कर्तारम आत्मनम मन्यते तु यः पश्यत्य कृत बुद्धि त्वानं स पश्यति दुर्मति। जो अपने को कर्ता मानता है वह स्वयं श्री कृष्ण भगवान की नजरों में दुर्मति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी दुर्मति कहलाने से बचने के लिए अपना कर्तृत्व सौंप देते हैं व्योम के शास्त्री को और उनके अभिन्न व्योम के शास्त्री किसी अन्य को। इसके पीछे भी वही तत्ववाद है जिसका जिक्र द्विवेदी जी ने प्रसाद के प्रसंग में किया है। भगवान स्वयं नर रूप धारण कर अपनी लीला का विस्तार करते हैं। कथा कीर्ति की रचना प्रक्रिया में यह एक प्रकार का अवतारवाद ही है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह तत्ववाद साहित्य में एक तरह से चीर परिचित निवेर व्यक्तितावाद के सिद्धांत की प्रतिष्ठा करता है। कला सृजन में निर्वैयक्तिक होने के लिए कलाकार मास्क अथवा मुखौटे का प्रयोग करता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी ने इस मुखौटे की प्रविधि का प्रयोग जमकर किया है। द्विवेदी जी के लिए मुखौटे के प्रयोग का एक विशेष कारण प्रतीत होता है व्योम के शास्त्री के शब्दों में। जब आप नीरस कामों से थक जाते हैं तो इस प्रकार के गप्पों की रचना में विश्राम पाते हैं। लेकिन बात केवल नीरस कामों से थकने की ही नहीं है, सवाल नीरस काम करने वाले व्यक्तित्व का है। नीरस काम करने वाले द्विवेदी जी आचार्य हैं। एक आचार्य गप मानने की भूमिका नहीं निभा सकता, इस भूमिका के लिए एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व की जरूरत है। इसके लिए ऐसा व्यक्ति वांछनीय है जो पंडित होते हुए भी आचार्य के लोकदत्त पदभार से मुक्त हो। पंडित व्योम के शास्त्री से बढ़कर उपयुक्त व्यक्ति और कौन हो सकता है इस भूमिका के लिए। इस प्रकार व्योम के शास्त्री गप की सर्जनात्मक भूमिका के लिए गढ़े हुए एक चरित्र हैं। कला के इतिहास से परिचित विद्वान जानते हैं कि आदिम युग से मुखौटे का प्रयोग होता आया है। नृत्य और नाट्य की ऐसी अनेक शैलियां आज भी प्रचलित हैं, जिनमें मुखौटे अभिव्यक्ति के लिए सबसे समर्थ साधन माने जाते हैं। स्वयं भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में प्रति शीर्षक नाम से मुखौटों के प्रयोग की चर्चा की है। आधुनिक युग में तो आलोचकों ने कविता के अंतर्गत छोटे प्रगीतों तक में कवि द्वारा प्रयुक्त मुखौटे का अस्तित्व लक्षित किया है। मुखौटे के बारे में ऑस्कर वाइल्ड ने तो यहाँ तक कहा है कि किसी सभ्य समाज में लोगों के बारे में जो दिलचस्प चीज है वह है मुखौटा, जो उनमें से प्रत्येक धारण करता है, न कि मुखौटे के पीछे की वास्तविकता। उनकी यह भी धारणा थी कि मनुष्य जब स्वयं बोलता है तो अपने असली रूप में नहीं होता है, उसे एक मुखौटा दे दीजिए फिर देखिए वह सच बोलने लगेगा। दरअसल मुखौटा इसलिए मूल्यवान है कि वह स्वयं एक कला कीर्ति है और कला कीर्ति स्वयं मनुष्य से ज्यादा अभिव्यंजक होती है। विचित्र विरोधाभास है कि जो मुखौटा चेहरा छिपाता है वही भाव को ज्यादा से ज्यादा उद्घाटित करता है। इसलिए द्विवेदी जी जब अपनी कथा कीर्तियों में अपने आप को किसी कल्पित कथावाचक की ओट में छिपाते हैं तो प्रयोजन अपने आप के अधिक से अधिक उद्घाटन का ही होता है। इस एक मुखौटे के द्वारा सारी कुंठा हवा हो जाती है और सहज अभिव्यक्ति का द्वार खुल जाता है। यदि यह मुखौटा न होता तो शायद हिंदी साहित्य बाणभट्ट की आत्मकथा चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा की सुकुमार संवेदना वाली साहसिक प्रेम कहानियों से वंचित रह जाता। आकस्मिक नहीं है कि द्विवेदी जी के सारे उपन्यास मूलतः प्रेम कथा ही हैं और इन सब में प्रेम का एक चीर परिचित त्रिकोण है, किंतु त्रिकोण में ईर्ष्या के स्थान पर समरस संबंध का उद्भूत निर्वाह किया गया है, निश्चय ही एक तत्ववाद के अधीन। किंतु द्विवेदी जी की विशिष्टता मुखौटे की प्रविधि के प्रयोग से अधिक स्वयं उस मुखौटे की नवीन परिकल्पना में है। वस्तुतः किसी कलाकार की पहचान उस मुखौटे से होती है जो एक निश्चित भूमिका अदा करने के लिए बनता है। भूमिका की सफलता उस मुखौटे की कलात्मक प्रकृति पर निर्भर है। द्विवेदी जी ने अपने फक्कड़पन वाले दर्शन के अनुरूप ही मुखौटे के रूप में बराबर ऐसे चरित्र का निर्माण किया है जो स्वभाव से थोड़ा फक्कड़ हो। बाण भट्ट की आत्मकथा की दीदी मिस कैथराइन भी थोड़ी सनकी है। चारू चंद्र लेख के अघोर नाथ तो खैर अवधूत है ही, लेकिन इन सबके सिरमौर अनामदास है। बाण भट्ट की आत्मकथा में बाण भट्ट की कहानी से लोग इतने अभिभूत हो जाते हैं कि मुखौटे के रूप में प्रयुक्त दीदी की कहानी के महत्व की ओर ध्यान ही नहीं जाता, जबकि स्वयं दीदी की मर्म वेदना जनित सनकीपन की कहानी संपूर्ण उपन्यास का स्वर निर्धारित करने वाली है। और ध्यान से सुनते तो नेपथ्य में धीमे धीमे अंतर्ध्वनि के समान निरंतर बजती रहती है। इसके विपरीत चारू चंद्र लेख में यदि अघोर नाथ के समाधिस्थ चित्त में प्रतिफलित बातें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती तो समूचे उपन्यास का विन्यास उससे प्रभावित होता है। और जैसे कि आलोचकों की राय है, तितिर बितिर हो जाता है। इस दृष्टि से अनामदास का पोथा स्वयं कथा चाहे जितनी इकहरी हो, किंतु उसकी भूमिका सबसे दिलचस्प और जोरदार है, क्योंकि इसमें स्वयं अनामदास का चरित्र कथानायक रेक्व से भी ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल यह भूमिका अपने आप में स्वयं एक व्यक्ति व्यंजक निबंध है। उल्लेखनीय है कि द्विवेदी जी ने उसका एक शीर्षक भी दे दिया है, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। अपने आप को द्विवेदी जी ने जितना इस भूमिका में उद्घाटित किया है शायद ही कहीं अन्यत्र किया हो। भूमिका क्या है? जैसे जीवन की सांध्य बेला में सारे जीवन का सिंहावलोकन, पीछे की ओर देखता हूँ विराट रिक्तता, जो कुछ करता रहा हूँ वह क्या सचमुच किसी काम का था? अपनी सीमाओं त्रुटियों ओछाइयों को छिपाकर अपने को कुछ इस ढंग से दिखाना कि मैं सचमुच कुछ हूँ, यही तो किया है। छोटी छोटी बातों के लिए संघर्ष को बहादुरी समझा है, पेट पालने के लिए छीना छपटी को कर्म माना है, छोटी प्रशंसा पाने के लिए स्वांग रचे हैं, इसी को सफलता मान लिया है। किसी बड़े लक्ष्य को समर्पित नहीं हो सका, किसी का दुख दूर करने के लिए अपने को उचील उलीच कर दे नहीं सका। सारा जीवन केवल दिखावा, केवल भोड़ा अभिनय, केवल हाय हाय करने में बीत गया। तुलसीदास ने मेरे जैसे ही किसी को देखकर कहा होगा, को भल कहो देव कछु असी वासना न मत तेई जाई। ऐसा लगता है नाटक समाप्त होने से पहले ही अभिनेता अपनी सारी सज्जा उतार कर दर्शकों के सामने खड़ा है और कह रहा है कि अब यह नाटक मुझसे न होगा। साहित्य में आत्मवेदना का ऐसा अनावृत स्वर तुलसीदास और शायद निराला के बाद यही सुनने को मिलता है। यह आत्मवेदना इसलिए और भी गहरी है कि इसमें आत्मोपहास का स्वर घुला हुआ है। व्यथा आत्म दया में नहीं डूबने पाती, बीच बीच में आत्म व्यंग उसे कोड़े मारता रहता है, कभी अपने नाम का मजाक, कभी अपने काम का, कभी अनामदास की अंगद कूद का, कभी ज्योतिष का, कभी इस बात का कि हर विश्वास परायण हिंदू के समान वे भी हिसाबी थे, और कभी उन लोगों पर जो अपने को प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील कहते हैं और आदि मनोवृत्ति के अनुरूप विरोधी के पुतले जलाते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, फिर भी व्यंग की मुख्य धार अपने ही ऊपर है। अनाम के बहाने शायद अपने ही लिए यह टुकड़ा कहा गया है। अनाम के भीतर सोया हुआ कोई कवि भी है, रह रहकर वह जाग पड़ता है, फिर किसी अदृश्य चाबुक की चोट खाकर बेहोश हो जाता है, न मरता है न मोटाता है। अनाम के भीतर का आलोचक सब समय गर्जन तर्जन द्वारा उसका होश हवास गुम करता रहता है, पर ऐसा लगता है कि यह आलोचक जितना गर्जन करता है उतना शक्तिशाली नहीं है। कालिदास ने अपने एक विदूषक से कहलवाया है कि जैसा सांपों में डुंडुभ होता है वैसा ही ब्राह्मणों में मैं हूँ। डुंडुभ बिल्कुल निर्विष सर्प है, अनाम का आलोचक भी आलोचकों में डुंडुभ ही है। कहने का मतलब यह है कि अनामदास के भीतर का कवि सुप्त है, आलोचक अशक्त, फिर भी कोई बात है जो आकृष्ट करती है। अंत में सब हवा है कहकर द्विवेदी जी फक्कड़ाना अंदाज में सारी व्यथा को उड़ा देते हैं। क्या यह मुखौटा अपने आप में आकर्षक और कलापूर्ण नहीं है? यह नाटकीय प्रविधि इस हद तक द्विवेदी जी के स्वभाव का अंग बन चुकी है कि इसका उपयोग वे अपने उपन्यासों के बाहर भी यथा अवसर करने से नहीं चूकते, खास तौर से जब मर्म पर चोट लगती है। मेघदूत की टीका करते हुए दिंग नागा नाम पथी परी हरण स्थूल हस्तावलेपान पर लिखते हैं, दिंग नाग पंडित बड़े शास्त्रार्थी थे, अपने तीक्ष्ण सर के समान वेध देने वाले तर्क के मारे वे स्वयं परेशान थे। तर्क की आंच से उनकी सारी सहृदयता सूख गई थी। वे कालिदास से भी भिड़ पड़े थे, भला तर्क ककर्ष पंडित और सहृदय रसवर्षी कवि का क्या मुकाबला। परंतु दिंगनाग तो उस गवार पहलवान की भांति हर आदमी को ललकारा करते थे जो सबकी महिमा की परीक्षा पंजा लड़ाकर किया करता था। दिंगनाग को लोग पंजा लड़ाने वाला ही कहने लगे थे। उन्होंने हस्तबल प्रकरण या मुष्टि प्रकरण नामक ग्रंथ लिखा था। परिहास में कालिदास के अनुयायियों ने मुष्टि पर प्रकरण का अर्थ कर लिया, पंजा लड़ाने की कला बताने वाला ग्रंथ। इस प्रकार दिंगनाग पंडित स्वयं हस्तबल या मुष्टिबल के कायल थे। अब यह अलग से बतलाने की जरूरत नहीं है कि जीवन में द्विवेदी जी को स्वयं भी कभी ऐसे ही दिंगनाग से पाला पड़ा था। जिन्हें द्विवेदी जी से निजी पत्र पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनकी साक्षी से भी पता चलता है कि व्योम के शास्त्री के रचे छंदों द्वारा वे मन का तनाव ढीला कर लिया करते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रेक्टर पद से त्याग पत्र देने के बाद 18 दिसंबर 1969 को सुमन जी को कुछ ऐसी ही मना स्थिति में लिखा, पढ़ा पढ़ाया लिखा लिखाया अब क्या करना बाकी, व्योम केस दरवेश चलो गंगा के तट एकाकी। कभी कभी व्योम केस पंडित शुद्ध विनोद के लिए संस्कृत छंद में भी चालू हो जाते थे। शांति निकेतन की एक विचार गोष्ठी की पूरी रिपोर्ट शास्त्री जी ने संस्कृत पद्य में लिख डाली, जिसका एक छंद यहाँ वानगी के लिए पेश है। सद्य स्नान समापनांतर धुत प्रोध भासिका कांगना दीप्तिम चो रण तत्पराम नवतराम टोपिम वहन मूर्धन्यस्यो किंचिम द्रूढ़ वट प्ररोह जटिलाम दाढ़िम समाम्रे ढयन मौलाना अदमुदीन साहिब वरो हद्दी समाख्यातवान। तुरंत स्नान समाप्त करने के बाद अपने पंखों को झाड़ देने से उद्भासित कौवे की बहू की दीप्ति चुरा लेने में सदा तत्पर टोपी सिर पर धारण किए हुए वे थोड़ी थोड़ी उगी हुई बरगद के बरोह के समान जटिल दाढ़ी को सहलाते हुए मौलाना आदमुद्दीन साहेब हदीस पर बोले। यही वृत्ति प्रायः उनके भाषणों में भी दिखाई पड़ती थी, जिनमें बीच बीच में विनोदपूर्ण चुटकुलों और किस्मों की छौंक देकर वे गंभीर पांडित्य का भार हल्का किया करते थे। जैसा कि अशोक के फूल में उन्होंने लिखा है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती, वह उस अवस्था में उदास भी नहीं रहती। जिसे वे गप कहते थे, वह पंडिताई के बोझ को हल्का करने की ही विधि नहीं है, नहीं थी, उदासी को कम करने की भी कला थी। और कहने की आवश्यकता नहीं कि उसे उन्होंने अपने स्वभाव का सहज अंग बना लिया था। द्विवेदी जी के फक्कड़पन से इस गप की कला का गहरा रिश्ता था, और यह कहना असंगत न होगा कि साहित्य में उनकी अपनी विधा यह गप ही थी, जिन्हें ललित निबंध, व्यक्ति व्यंजक निबंध, रम्य रचना आदि जाने किन किन भारी भरकम नामों से सराहा जाता है। वे निबंध तो गप है ही, उनकी कथा कीर्तियां भी इसी गप के अंतर्गत आती हैं। हिंदी के साहित्य शास्त्र में अगर इस विधा को अभी तक स्थान नहीं मिल सका है, तो इसलिए कि इस विधा का आविष्कार द्विवेदी जी ने ठेठ अपने लिए अपनी विशिष्ट सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए किया था। गप में उनका भदेशपन भी है, कल्पनाशीलता भी, अंगद कूद भी, ढीला ढालापन भी, भाषा का सहजता प्रभाव भी, और बीच बीच में उदाहरण देने का शौक भी। इसी बेहद्दी मैदान में उन्हें एक उनकी प्रतिभा को खूल खेलने का मौका मिलता था। ऐसी प्रतिभा न तो निबंध नाम से जानी जाने वाली विधा के चौखटे में फिट आ सकती थी, न उपन्यास नामक सुनिश्चित विन्यास वाले कला रूप से ही संतुष्ट हो सकती थी। अकारण नहीं है कि उपन्यास की सुपरिचित विधा से बधे आलोचकों को द्विवेदी जी की कथा कीर्तियों को उपन्यास मानने में प्रायः संकोच हुआ है। गनीमत है कि हिंदी में निबंधों की कोई सीधी सधी बंधी लंबी परंपरा नहीं है, वरना उनके निबंधों पर भी इसी तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए जाते। वैसे शुक्ल जी के चिंतामणि वाले निबंधों को ही निबंध मानने वाले विद्याबद्ध विद्वान द्विवेदी जी के निबंधों के हल्केपन को बहुत ऊंची दृष्टि से देखते प्रतीत नहीं होते। तो फिर यह गप क्या है? जिस तरह द्विवेदी जी ध्वनि परिवर्तन के अपने निजी नियम से कंदर्प और गंधर्व को सजातीय और सहोदर सिद्ध कर देते हैं, क्या उसी नियम से गप के सुसंस्कृत रूप गल्प और कल्प को सजातीय और सहोदर नहीं माना जा सकता? गप हो भले ही गल्प का ही तद्भव, लेकिन गप में जो व्यंजना है वह गल्प की सीमा से बाहर पड़ती है। फिर भी कल्प सृष्टि से उसका रिश्ता निकाला जा सकता है। यह कल्प सृष्टि ही है जो द्विवेदी जी के निबंधों से लेकर उपन्यासों तक ही एक तान है। यदि यह शास्त्र परिगृहित है और शास्त्र स्वीकृत नहीं है तो अनुकरणीय भी नहीं है। हर बड़ी प्रतिभा की तरह द्विवेदी जी ने अपने लिए अपनी काट का एक नया साहित्य रूप गढ़ा है। आखिर मांतेन से अपने पहले यूरोप में भी ऐसे कहा था, और जब वह गद्य की एक विधा बनकर बैकन से हेजलीट तक पहुंचा, तो क्या वह अपनी प्राणवत्ता में मांतेन का ही ऐसे रह गया था? दरअसल इस विधा के जन्म का संबंध एक निश्चित सांस्कृतिक वातावरण और एक निश्चित मानसिकता के मनुष्य से है। कलाओं के इतिहासविद कैनेथ क्लार्क ने सिविलाइजेशन 1969 नामक अत्यंत लोकप्रिय पुस्तक में उस वातावरण और उस मनुष्य को याद करते हुए लिखा है। 16वीं सदी के मध्य में कोई समझदार और खुले दिमाग का आदमी क्या कर सकता था? चुपाई मारे, एकांत में काम करे, बाहर से हाहा करे, अंदर स्वतंत्र रहे। धर्म युद्धों ने यूरोप की सभ्यता में एक ऐसी नई मूर्ति का उद्रेक किया जो चीन के महान युगों में पूर्व परिचित है, बौद्धिक परिवार्जक है। 16वीं सदी के मध्य का सबसे बड़ा मानववादी अपनी मीनार में संन्यस्त हो गया, जो आधुनिक युग की हाथी दांत की मीनार नहीं थी बल्कि सचमुच की मीनार थी। यह था मिशेल डी मांटेन। वह दोनों धार्मिक संप्रदायों से ही अनाशक्त नहीं था, ईसाई धर्म मात्र के प्रति पूर्णतः संदेहशील था। उसके ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं, लेकिन वे उदाहरण बाइबिल के नहीं हैं, ग्रीस और रोम के लेखकों से लिए गए हैं। वह क्लासिक ग्रंथों का पंडित था, लेकिन क्लासिक की पंडिताई से ज्यादा महत्वपूर्ण थी उसकी अनाशक्ति। उसका मस्तिष्क एक ही चीज में संसक्त था, सत्य कथन, लेकिन उसके सत्य की धारणा उस धारणा से एकदम भिन्न थी जिसे गंभीर लोग इरास्मस के न्यू टेस्टामेंट में खोजते हैं। उसमें हमेशा हर सवाल के दूसरे पहलू को देखने की कोशिश की थी, चाहे वह दूसरा पहलू परंपरित प्रतिमानों पर कितना ही दहलाने वाला क्यों न हो। और इस सत्य की प्रामाणिकता सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर थी, जिससे वह बिना किसी शर्म और झिझक के जिरह कर सकता था, वह स्वयं। अतीत में आत्म परीक्षा पीड़ादायी और पश्चाताप पूर्ण थी, मांटेन के लिए वह आनंददायक थी। उसने ऐसे का आविष्कार इसलिए इसी कार्य के लिए किया। इस लंबे उद्धरण का प्रयोजन हजारी प्रसाद द्विवेदी को मांटेन साबित करना नहीं है, न 20वीं सदी के मध्य का भारत 16वीं सदी के मध्य का यूरोप है, और न द्विवेदी जी कोई बौद्धिक परिवारजक जो अपनी कुटिया में बंद रहे। फिर भी मांटेन के उस मानववाद से द्विवेदी जी के मानववाद का कुछ रिश्ता तो है ही, जो भारत के विवाद संकुल चौथे पांचवें दशक को देखते हुए नितांत दुर्लभ किंतु बहुत राहत देने वाला है। द्विवेदी जी के फक्कड़पन में भी बहुत कुछ उसी प्रकार का एक संदेहवाद है जो सिनिज्म और निहिलिज्म में निहित हिंसात्मक से बहुत भिन्न है। अपने आप को तार तार कर देखने की निर्मम वृत्ति उतनी तीव्र भले न हो, किंतु सत्य के दूसरे पहलू को देख लेने की सहिष्णुता यहाँ पूरी तरह मौजूद है। किंतु इन सबसे बढ़कर है इस पूरी प्रक्रिया में बिना किसी प्रकार का अनुताप लाए हुए आनंद लेने की वृत्ति। गप का जन्म इसी वृत्ति में संभव है, और कहना न होगा कि द्विवेदी जी के निबंधों और कथा कीर्तियों का गप इस आनंदनी वृत्ति का कलात्मक विलास है। इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी और व्योम के शास्त्री में अपने आप को द्विधा विभक्त करके द्विवेदी जी ने उस सृजनशीलता की रक्षा और विकास किया जो हिंदी साहित्य के लिए मूल्यवान उपलब्धि है।